विद्यार्थियों, हम दूसरे पाठ रैदास पर बातचीत करना चाहेंगे। रैदास के तीन पद और तीन दोहे आपके पाठ में दिए गए हैं और उनकी मुख्य मुख्य विशेषताओं को आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप इस पाठ को आसानी से समझ सकें। इसमें सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है कि रैदास द्वारा रचित पद और दोहों में भक्ति रस का माधुर्य आपको मिलेगा। यह रैदास भक्त कवि थे और रामानंद के शिष्य थे, कबीर के समकालीन इनको माना जाता है और इन्होंने अपने पदों में और दोहों में भक्ति भाव का पूरा समग्र रूप प्रस्तुत किया है और सच्ची भक्ति की परिभाषा दी है। वे यह मानते हैं कि भक्ति मार्ग में ऊंच नीच, जाति पाति आदि का कोई महत्व नहीं है। तो अभी हम पदों के बारे में एक एक करके देखते हैं
जी।
इनका पहला पद है, नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी, तू मोहि देखै हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई, तू मोहि देखै तो ही न देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई, सबकट अंतर रमस निरंतर, मैं देखन नहीं जाना, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना, मैं तै तोरी मोरी असमझिसौं, कैसे करी निस्तारा, कह रहे दास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत आधारा। अब यहाँ देखें आप, इस पद में ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन है
जी।
निराकार रूप का मतलब होता है कि ईश्वर सामने दिखाई नहीं देते बल्कि वह कण कण में व्याप्त हैं।
बिल्कुल सर,
उनका ना आदि है ना अंत है। और दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं कि मैं जो है, मैं और मेरे समान जो भक्त लोग हैं वे माया में बंधे हुए हैं, इसलिए भक्ति करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं
जी।
तो इस भाव को व्यक्त करते हुए वे अपने प्रभु से कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी बुद्धि अत्यंत चंचल है
जी,
आप ही बताएं कि मैं आपकी भक्ति किस प्रकार करूं।
जी सर,
मैं माया जाल में फंसा हुआ हूं, मोह बंधन में बंधा हुआ हूं और एकाग्रचित्र होकर मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूं, तो यह मेरी विवशता है
जी।
इसलिए मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि मैं आपकी भक्ति में कैसे निमग्न हो सकूं।
जी सर,
यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक ओर वे अपनी असमर्थता बताते हैं और दूसरी ओर वह अपने प्रभु की सर्वव्यापकता को बताते हैं और वह कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आप चारों तरफ व्याप्त हैं, लेकिन मेरी स्थिति तो बड़ी दयनीय है, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, आपका कोई रूप रंग नहीं है, तो आपके साथ प्रेम कैसे होगा, है ना। सामान्य जीवन में भी प्रेम उसी के साथ होता है जिसको हम देखते हैं। तो यहाँ एक तरह से वो ईश्वर को समझाना चाहते हैं कि मैं प्रेम इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सामने नहीं आते
जी,
और मैं मोह ममता में फंसा हुआ हूँ, बहुत सारे जो जीवन की बाधाएं हैं उनमें उलझा हुआ हूँ।
बिल्कुल सर,
तो मैं इस द्वंद्व से छुटकारा कैसे पाऊँ, एक तरफ से वो प्रश्न कर रहे हैं। और यह भी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं संसार में आपके सहारे ही चल रहा हूँ और मैं आपकी जय जयकार करता हूँ। तो यहाँ शिक्षार्थियों आप देखें कि संत रैदास ने आत्मा और ब्रह्म दोनों के बारे में यहाँ बात की है। आप जानते हैं कि एक वेदांत दर्शन माना जाता है
जी,
जिसमें आत्मा और ब्रह्म की बात की जाती है और उसी को इस पद में उन्होंने बताने की कोशिश की है और अपने मन की स्थिति को बल्कि चंचलता को व्यक्त किया है एक ओर, और दूसरी ओर ईश्वर की व्यापकता को व्यक्त किया है। तो यहाँ भक्त और भगवान के बीच दास्य भाव का संबंध है। दास्य का मतलब होता है कि जो भक्त है अपने को दास समझता है और ईश्वर को वह स्वामी मानता है,
स्वामी मानता है।
तो इस तरह का भाव यहाँ पे है। दूसरा पद हम देख लेते हैं, यह मत इसमें जी कुल साधु वैष्णो होई बरन अबरन रंग कुल नहीं इसरू विमल वासु जानिए जग सोई।
जी
इस पद में आप देखें तो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में जाति पाति का कोई बंधन नहीं होता, और जिसके हृदय में प्रेम की गंगा बह रही हो, प्रेम का संचार हो रहा हो, वही भक्त भक्त भगवान का सबसे अधिक प्रिय होता है। तो यहाँ पे एक तरह से उन्होंने जाति पाति के भेद का विरोध किया है और यह बताने की कोशिश की है कि ईश्वर प्रेम रूपी रस का पान कर लेना चाहिए और तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर के प्रति अनुराग रख सकते हैं।
जी
कोई कितना भी बड़ा राजा हो या पंडित हो, वह भक्त की बराबरी नहीं कर सकता।
जी सर।
तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। एक तीसरा पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समानी। ये बड़ा प्रसिद्ध पद है और यहाँ पे भक्त और भगवान के बीच जो अटूट संबंध है उसे व्यक्त किया गया है। पूर्ण समर्पण का भाव यहाँ पे व्यक्त हुआ है और भक्त यहाँ पे अपने को समर्पित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर को चंदन और स्वयं को पानी की उपमा देते हैं। उसी तरह से बादल, चांद, दीपक और मोती अनेक अनेक उदाहरणों के माध्यम से वे चकोर, बाती, धागा, इनके बीच अंतर संबंध स्थापित करते हैं।
जी सर।
और वे यह बताना चाहते हैं कि भक्त की महत्ता तभी बढ़ जाती है जब ईश्वर के साथ संयोग मिलता है, अर्थात दोनों के बीच अनन्य संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि उपमा अलंकार आपको यहाँ दिखाई देगा और जैसे उपमालंकार वहां पे होता है जहाँ तुलना की जाती है।
जी।
रूपक अलंकार का भी यहाँ पे प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है, दोनों एक ही हो जाते हैं। उसके अलावा तीसरा दृष्टांत अलंकार यहाँ पे आपको दिखाई देगा जहाँ पे तुलना की जा रही है। इसके अलावा जो छोटे छोटे दोहे हैं इनमें पहला दोहा अगर हम लें, हरिसा हीरा छाड़ी करी, यहाँ ईश्वर की महिमा का वर्णन है शिक्षार्थियों।
जी।
और वे कहते हैं कि यदि मुक्ति प्राप्त करनी है और बार बार जन्म लेने के चक्र से बचना है तो उसका एक ही उपाय है, ईश्वर की भक्ति।
जी सर।
और दूसरे दोहे में रैदास कहे जाके हृदय, यहाँ सदाचरण के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को त्यागने की बात कही गई है।
जी।
और वे कहते हैं कि संसार के लोग माया मोह में फंसे हुए हैं, इसीलिए वे सच्ची भक्ति नहीं कर पाते हैं। और तीसरा जो दुआ है, जा देशे घिड़ उपजय, यहाँ रैदास ने समाज में जो प्रचलित जाति प्रथा थी उसके विरोध में अपनी बात रखी है और यह कहा है कि ईश्वर का भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है।
जी।
और वही ईश्वर का प्रिय होता है।
बहुत अच्छा।
जैसे हम कहते हैं जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का
होई,
वह भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है।
जी।
तो इसी तरह से अगर आप शिल्प सौंदर्य भी आप देखें तो यहाँ पे आपको दोहा और पद जैसा मैंने बताया यहाँ पे है, और गेयात्मकता है, आप इसको गा सकते हैं आसानी से। उसी तरह से मैंने अलंकारों के बारे में भी बताया कि विभिन्न अलंकारों का यहाँ प्रयोग है, और कुल मिलाकर अगर भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो रैदास की कविताओं में अनेक तरह का सौंदर्य आपको दिखाई देगा।
बहुत अच्छा सर,
तो मुझे लगता है कि शिक्षार्थी आप इसको बार बार पढ़ें तो बहुत आसानी से ये पद समझ में आएंगे आपको।